ஓம் சாந்தி. சத்யுக் சே சல்தே சல்தே ஹம் சப் கஹாம் பஹுஞ்ச் கயே, பஸ் சங்கம் யுக் பே. சங்கம் யுக் கோ தோ லம்பா சமயம் ஹோ கயா சல்தே ஹுவே, ஆப் கஹாம் பஹுஞ்ச் கயே. சங்கம் யுக் கே பி ஆகிரி படாவ் பர் ஆ கயே ஹேன், ஜிஸ்மே ஏக் பஹுத் சுந்தர் பாட் இஸ் தர்த்தி பர் சல்னா ஹே. அப் உஸ்கி தயாரி கர்னி ஹே, சமய சே பஹலே சப் குச் தயார் கர்னா ஹோதா ஹே நா, சமய பர் நஹி. சமய ஹமாரா சாத்தி பன் சக்தா ஹே, பர் க்யா நஹி பன்னா சாஹியே, ஹமாரா சிக்ஷக் நஹி பன்னா சாஹியே சமய, நஹி தோ பாரி படேகா. தோ ஹம் கஹாம் ஆ கயே ஹேன், குச் ஹி சமய கே பாத், அப் லம்பா சமய நஹி பச்சா ஹே. ஈஷ்ட தேவ் தேவியாம் இஸ் சன்சார் மே பிரக்யாத் ஹோங்கே, கோன் விஜயமாலா கே முக்கிய மணக்கே ஹே, உனே சாரா சன்சார் ஜானேகா ஓர் மானேகா. வஹாம் ஹம் பஹுஞ்ச் கயே ஹேன், தோ ஈஷ்ட தேவ் தேவியோ கோ க்யா காம் கர்னா ஹோகா போலோ. ஈஷ்ட தேவியாம் பதாவ், ஆப்கோ க்யா கர்னா ஹோகா, கோன் கோன் ஈஷ்ட தேவியாம் ஹே இதர், தர்சன் கர் லே ஜரா ஹம் பி. அச்சா ஆகே வாலே கோயி நஹி, பீச்சே வாலே ஹேன் தோடே ஹே. க்யா கர்னா ஹோகா ஆப் சபி கோ, சபகி மனோகாமனாயே பூர்ண கர்னி ஹோகி. ஹம் சர்ச்சா பிச்சலே சண்டே கி முரளி கோ லேகர் ஹி கரேங்கே. சபகி மனோகாமனாயே பூர்ண கர்னி ஹே. ஜெய்சே பாபா நே ஹமே ஹமாரி பக்தி கா ஃபல் தியா ஹே, ஹமாரே பி கோய் பக்த ஹே, உன்ஹே ஹமே உன்கி பக்தி கா ஃபல் தேனா ஹோகா. பீச்சே சே காம் பாபா ஹி கரேகா, லேகின் ஆகே ஹம் ஹோங்கே ஃபல் தேனே வாலே. ஜெய்சே ஹம் சப்னே பரமாத்தம் மிலன் கா சுக் பாயா ஹே, அனேக் பக்த் அப்னே அப்னே ஈஷ்ட தேவோ சே மிலன் கா சுக் பாயேங்கே. இஸ் சமய கி ஓர் ஹம் தேஜி சே படத்தே ஜா ரஹே ஹே. तो बाबा ने क्या कहा था, उसके लिए कौन सी स्थिति चाहिए? इच्छा मात्रम अविद्या, दिल से निकलता रहे, पाना था सो पा लिया, और इच्छाओं के पीछे मन की शक्ति नाश ना हो, इस पे चर्चा करेंगे. तुम्हें सबकी मनोकामना पूर्ण करनी है, उन्हें दुखों से छुड़ाने की, सुख शांति की मनोकामना है सबकी. सबकी मनोकामना है कि उन्हें मुक्त किया जाए, उन्हें मुक्ति का वरदान देना है. तो बाबा कहते हैं बहुत अच्छी बात है, मुरलियों में आ रही है, आगे भी आएगी. अपने महान कार्यों की स्मृति रहे, कितने बड़े काम हमें करने हैं उसकी स्मृति रहे, तैयारी हो. माताएं सब अनुभवी हैं, घरों में बड़े काम करने होते हैं. मान लो बच्चों की शादी करानी है, तैयारी करते हैं ना, दो चार साल पहले से ही करते रहते हैं. बड़े बड़े काम करने हैं, भाइयों को भी करने हैं या इस देवियों को ही? पहले देवियां करेंगी, देवताओं के भी आजकल हनुमान के भगत बहुत हैं, बहुत ज्यादा. लास्ट भक्ति जोर पकड़ती जा रही है हनुमान की. गणेश के तो हैं ही, पर हनुमान की मान्यता बहुत है. कहीं पंचमुखी हनुमान है, अलग अलग नाम है हनुमान के भी, कहीं मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले महावीर अलग अलग हैं। तो बाबा का एक और सुंदर शब्द था उसमें, आगे चलकर यानी इस समय, अब जो समय आ रहा है, संसार के अनेक लोग आपको सर्व खजानों से भरपूर अनुभव करेंगे, शांति से भरपूर, सुखों से भरपूर, शक्तियों से भरपूर, जो दिखाई देगा प्रैक्टिकल में, खुशी से भरपूर, ये खजाने हैं हमारे। तो जिन्होंने ये सब अपनाया होगा, आगे आ जाओ सुमन बहन, सुमन बहन है ना, यहाँ आ जाओ भाई, ये बैग नीचे रख लो, माताओं बैग रख लो, आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो जिन्होंने अपनों अपने को सर्व खजानों से भरपूर किया होगा, वे संसार को तृप्त करेंगे। और जो अपनी कामनाएं पूर्ण करने में लगे रहे, वो सर्व खजानों से भरपूर भी नहीं हो पाएंगे। वो कामनाएं कौन सी जिन पर बाबा ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, कौन सी कामनाएं जो मनुष्य की स्थिति को डाउन करती है, बोलो। एक तो स्थूल इच्छाएं होती हैं, भाई बाजार में कुछ अच्छी चीज आ रही है, हमें भी चाहिए, पैसा है तो लोग ले लेते हैं। कौन सी कामना जो मनुष्य की स्थिति को, उसकी शक्तियों को बिगाड़ती है, मान शान की इच्छा। किसने मुझे कहा ज्ञान सरोवर में मैं आ रहा था, तो भाई मान शान क्या होते हैं इसको जरा अलग अलग बता देना, कईयों को समझ में कम आता है ये मान शान क्या। अब जो छोटे हैं बाबा के बच्चे साधारण, उनको तो मान की कोई समस्या नहीं होती, कोई दे या ना दे, उन्हें अपनी सेवा करनी है। लेकिन जहां सेवाओं में मान की इच्छा हो जाती है, क्या क्या होता है मान में, मैंपनिस से जुड़ा होता है, केवल मैं ही करूं, मेरा ही नाम हो, टीवी पर आ जाऊं, अखबारों में मेरा नाम आ जाए, लोगों को पता लग जाए मैं बड़ा हूं महारथी, और आगे बहुत कुछ है, आप खुद सोच लेना। ये मान, मैंने इतना किया उसका कुछ तो मुझे मिलना चाहिए, मुझे कोई पूछता ही नहीं, ये परेशानियां मान की इच्छा वालों की परेशानियां। उसके पास ये चीजें हो गई, मैं भी तो इतने समय से हूं ज्ञान में यज्ञ में, मुझे कुछ नहीं मिलता, स्थिति बिगड़ी। एक की स्थिति बिगड़ी, एक्टिवा चाहिए था, मैं भी तो 25 साल से हूँ, 10 साल वालों को मिल गया, मुझे नहीं मिल रहा है, स्थिति बिगाड़ ली। एक्टिवा चाहिए नहीं पर उनको मिल गया, तो मेरे पास भी तो होना चाहिए, कम से कम एक्टिवा का तो मालिक हूँ, स्थिति बिगड़ गई, जाना का ही नहीं है उनको एक्टिवा से। श्याम किसे कहते हैं बोलो, सुशील नहीं, ऐसे शब्द बोलो जो सबको समझ में आ जाए, ठाट बाट से रहना, शान से रहना। कार भी अगर आपने छोटी भेज दी, ये क्यों आई मेरे लिए, मैं इस कार के योग्य हूं, इसमें तो साधारण लोग बैठते हैं, कौन सी कार चाहिए, मर्सिडीज। समझ गए ना, कपड़े भी ऐसे ही, ऐसे वैसे क्यों, बहुत समय पहले मुझे याद है यज्ञ तो साधारण था, पैसा आदि ज्यादा नहीं था, एक व्यक्ति जो बड़े हैं, अभी दिल्ली में प्रोग्राम था, सभी लोग थ्री व्हीलर से जाते थे, उन दिनों 2 रुपए खर्च होता था सेंटर से और रामलीला मैदान तक जाने में। वो कहते मैं थ्री व्हीलर में नहीं बैठूंगा, पैंट की क्रीज खराब हो जाएगी, कार ही चाहिए। इसको श्यान कहते हैं। श्यान, इसके पीछे क्या है, कौन सी बुराई आ गई, देहभान। इन सब से बाबा हमें ऊपर उठाना चाहता है। बाबा की साकार मुरलियों में हम क्या सुनते हैं, 108 चत्तियों के कपड़े पहनो, सुना है? चत्ती माना लगते हैं ना, पीसेज सिल देते। अब कोई पहने तो लोग उसकी मजाक करने लगेंगे, आजकल तो जमाना गया। बाबा ने कभी मुरली चलाई थी, ये जो चित्र हैं तुम्हारे, झाड़ त्रिमूर्ति, इसका कोट बनवाओ और पहन के घूमो, लोग पूछेंगे ये क्या है। तो हैदराबाद में एक भाई ने प्रैक्टिकल कर दिया, अच्छा कोट बनवाया, पीछे त्रिमूर्ति था, आगे कल्प वृक्ष था, शिव बाबा, लक्ष्मी नारायण अंदर भी थे। वो तो चौराहे पे जा खड़ा हुआ, लोगों ने सोचा कार्टून आ गया कोई, फिर उसको वो सेवा करनी नहीं दी, कहा ये रॉयल्टी नहीं है। पर बाबा ने कहा था, बाबा ने हम सबके लिए एक बहुत सुंदर बात कही है व्यक्त में, चाहे तुम्हें 36 प्रकार का भोजन मिले और चाहे दाल रोटी या अचार रोटी, दोनों में समान आनंद हो। कई लोग, भोजन तो अच्छा होता है पर यहां मुझे क्यों बैठाया सबके बीच में, इससे परेशान हो जाते हैं। श्यान चाहिए अलग, बिल्कुल जहां कोई ना खाता हो वहां श्यान, भाई बड़े वीआईपी हैं, इसको श्यान कहते हैं। बाबा ने सेवा के लिए भी कहा, चाहे हजारों की सभा में भाषण करने को मिले, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा, दोनों में समान आनंद हो। यह स्थिति मन से भी परे, शन से भी परे। लेकिन भाषण करने वालों को अगर झाड़ू थमा दी जाए तो पहले तो चारों ओर देखेंगे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा, गड़बड़ न हो जाए, लोग कहेंगे देखा है झाड़ू लगा रहे हैं। तो हम सभी इच्छाओं से मुक्त बने, इच्छा मात्रम अविद्या, इसका अर्थ होता है हम इतने तृप्त हो जाएं कि हमें कुछ चाहिए भी क्या ये भी आभास न रहे, कुछ नहीं चाहिए। जैसे बाबा ने साकार मूल्यों में राजयोग की एक एक लाइन में सुंदर परिभाषा दी, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं। सुनेंगे आप साकार मूल्यों में ये परिभाषा, जो इस स्थिति में पहुंचे कि मेरा कुछ भी नहीं और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। तो हम चेक करेंगे हमारी मन बुद्धि किधर जाती है, वो किसी इच्छा के पीछे भटक रही है क्या। अगर किसी व्यक्ति को देखकर, अब गहराई से विचार करेंगे, किसी व्यक्ति को देखकर पर चिंतन होता है तो क्या इसके पीछे भी कोई इच्छा है, सोच लेना। यदि हम दूसरों को देखते रहते हैं, क्या इसके पीछे भी हमारी कोई सूक्ष्म इच्छा है, या हम इन दोनों से ऊपर उठ गए हैं, जो देखना था वो देख लिया, जिसके बारे में चिंतन करना है वो ज्ञान मिल गया, अब औरों के बारे में चिंतन, औरों को देखने की इच्छा, देखना माना गलत चीजें देखते हैं दूसरों में, दूसरों के अवगुण देखते हैं, इन सब से जो ऊपर उठ जाए वही श्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। सर्व खजानों से क्या भरपूर संपन्न हो सकते हैं, नहीं तो छोटी छोटी इच्छा, चाहे वो मान शान की हो, मान शान की इच्छा सबसे सूक्ष्म होती है, और ज्ञान मार्ग में, भक्ति में, दुनिया में जो विद्वान हुए, वेदों के विद्वान, तपस्वी हुए, वो इसी चीज में कमजोर रह गए, निष्काम नहीं हो पाए। इसके लिए दूसरा शब्द है निष्काम, जिसमें गीता के कई अध्याय हैं। निष्काम कर्म योगी बनो, निष्काम हो जाओ, किया और उसके बाद कुछ नहीं चाहिए, किया और बाबा को अर्पित कर दिया, इस फीलिंग से भी परे कि मैंने कुछ किया, सबसे परे हो जाए निष्काम। गीता में सबसे प्रसिद्ध बात है, आजकल तो लोग गीता को जानते भी नहीं है। आजकल की जो युवा पीढ़ी, उनसे यदि आप गीता की बात करो तो वो कहेंगे गीता तो हमारे पड़ोस में रहती है। कौन सी गीता भाई, कहाँ गीता, श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था। कौन से श्री कृष्ण, बहुतों को तो ये भी नहीं पता, और कब दिया था ये तो प्रश्न ही नहीं है। क्या वो तो बड़ी बात हो गई, विद्वानों में भी थोड़े से रह गए जो इन चीजों पे चिंतन करते हैं। निष्काम कर्म योग, निष्काम एक मुरली आ रही है जिसमें बाबा ने एक लाइन बड़ी गहरी बोल दी है, सुनेंगे आप, वो नोट कर लेना, कैच कर लेना। जब तक तुम्हारे कर्म अकर्म नहीं बनते, तुम बहुत खुश नहीं रह सकते। गहरी बात है ये, जब तुम्हारे कर्म अकर्म बनने लगेंगे तुम्हें अपार खुशी रहेगी। तो हम निष्काम हो जाएं, सेवा करके ये इच्छा ही न हो कि कोई हमें जाने। एक सन्यासी की बहुत अच्छी बात मुझे बहुत साल पहले किसी ने सुनाई, तब मैं इन चीजों पे पुरुषार्थ भी कर रहा था, लेकिन वो बात बहुत ही गहरी थी। एक गुरु, उसका शिष्य बहुत कुछ पढ़ता था और उसको ये भी बहुत इच्छा थी कि मुझे सब लोग जान लें और मैं भी सब कुछ जान जाऊं। तो उसके गुरु ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, जिसे हमें जानना चाहिए, भगवान को हमें जानना चाहिए, वो हमें जानता है, और कोई जाने इसकी जरूरत नहीं। हम सब के लिए तो प्रैक्टिकल है, उसने तो दूसरे ढंग से कहा, वो सब कुछ जानता ही है, लेकिन हम सब के लिए ये कितनी प्रैक्टिकल बात है कि बाबा हमें जानता है, हम उसे जानते वो अलग बात, वो हमें जानता है। रोज की जो अव्यक्त मूल्य आ रही संडे को, उसमें देखो बाबा कितना ऊंची नजर से हमें देखता है। तुम शांति के सूर्य हो, तुम इस संसार के बड़े हो। संडे को था ना, और आज सोच के देखो, भगवान हमें जानता है, हम भी नहीं जानते थे अपने को। तो जैसे बड़े परिवार का ध्यान रखते हैं, केयर करते हैं, तुम्हें इस विशाल परिवार का ध्यान देना है। कितना ऊंचा स्वमान बाबा हमें याद दिलाते हैं। और दूसरा पूछा, भगवान को जान लिया, फिर और कुछ जानने की जरूरत नहीं। हम में से भी जो बहुत ही इधर उधर देखते रहते हैं ना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये वो, नेट, यूट्यूब, बहुत है ना आजकल माया। पहले तो शास्त्र और पुस्तक पढ़ने की बात थी, आजकल वो नहीं है, पढ़ता कोई नहीं, किताबें बेचारों की बिकती नहीं आजकल। आजकल तो सबकी जेब में है खजाना, बुरा भी और अच्छा भी। मुझे एक अनुभव सुनाने की इच्छा हो गई, याद आ गया, आज ही किसी ने सुनाया, युवकों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जयपुर की एक बहन आई, वो ओरा चेक करने आए थे, मेरा अपनी मशीने कंप्यूटर लेकर एक ही दिन के लिए आए थे। एक बहन आई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी यूपी, और वो पीएचडी कर रही, उसके लिए करना था, और दूसरी है जयपुर की जो इस चीज में एक्सपर्ट है। तो मुझे बताया, देखो मेरे पास भी इंजीनियरिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो बहुत अच्छी पोस्ट पे है। तो मुझे कहा, एक अनुभव सुनाती हूँ। क्या? एक लड़का इंजीनियरिंग थर्ड ईयर उसका हो गया, 6 सेमेस्टर हो गए, उस 6 में 14 सब्जेक्ट में उसकी बैक आ गई, माना कम नंबर आ गए, जिसको फेल भी कहते हैं ना, दोबारा एग्जाम दे देते हैं आजकल, ऐसा नियम है, 14 में अब उसका फाइनल ईयर। अब उसको लगता है बी करने के लिए तो उसको पता नहीं 10 साल और चाहिएंगे क्या। वो लड़का इसके पास आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सबके लिए ये, छोटी और इम्पोर्टेंट, इसने उससे बातचीत की। अभी वो दुखी तो था ही, माँ बाप क्या कहेंगे, इतना 12वीं क्लास में 95% मार्क्स थे उसके, इंजीनियरिंग में गया था, तो सारा बता दिया। और एक चीज जिसके लिए मैं आपको सुना रहा हूं कि मैंने YouTube पर गंदी वीडियो देख ली, उसके कारण मेरी बुद्धि भटक गई, भ्रष्ट हो गई। अब मैं क्या करूं, मैं दुखी भी हूं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो इंजीनियर बन नहीं पाऊंगा। कहा ये साल उसका 4th था, पूरा हो गया ना, कहा 4th साल में उसके 14 जो बैक थी वो क्लियर हो गई और उसको फाइनल डिग्री भी मिल गई। कैसे हुआ, इसने उसको मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास सिखा दिया। सवेरे 108 बार लिखना है, क्योंकि उसको सुधरने की इच्छा थी, वो बहुत दुखी था अपने से, उसने दृढ़ता से ईमानदारी से ये काम किया, लिखा रोज, उससे उसका ब्रेन शांत होने लगा, जो निगेटिविटी भरी थी वो खत्म होने लगी और इतना अच्छा रिजल्ट उसका आ गया। तो दोनों बातें, एक तो नेट पर ये गंदी वीडियोज देखने से सभी बचेंगे, कईयों को लग जाती है रुचि, एक दो देखी फिर इंटरेस्ट बढ़ गया, समझ लें ये जीवन को नष्ट करने वाली चीजें हैं। मैं ये शब्द बोल रहा हूं उस लड़के के अनुभव से, आप समझ सकते हैं, मतलब उसको था या तो सुसाइड करेगा, बीटेक उसका होगा ही नहीं, माँ बाप को कैसे मुंह दिखाएगा, लोग मजाक करेंगे, 12वीं में जिसके 95 आए थे वो फेल हो गया है जीवन में, या बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और मास्टर सर्वशक्तिवान के अभ्यास से भाग्य बदल गया। तो हम सभी फिर वहीं आ जाएं, निष्काम हो जाएं, सब इच्छाओं को त्याग कर दें। अब एक है इच्छाओं को त्याग करना और दूसरा है योग में हमें इतना सुख मिलने लगे कि संसार का कोई रस हमें अपनी ओर खींचे ही नहीं। न माया, मुरली वही थी ना, काम जीत पाना कामनाओं को जीतने वाले। गीता में भी ये गड़बड़ हुई है, यहीं से ले लिया, उसमें है काम महाशत्रु है, बहुत अच्छा 3rd अध्याय में ही है, अर्जुन पूछता है हे भगवान न चाहते हुए भी मनुष्य पाप क्यों कर लेता है, क्या है जो मनुष्य को पाप के लिए प्रेरित करता है। उत्तर है ये काम ही मनुष्य का महावैरी है, बस वहां काम को काम विकार न कह के कामनाएं कह दिया, क्योंकि विद्वानों की आचार्यों की ये समझ में नहीं आया कि काम विकार मनुष्य का शत्रु है, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, ये आगे है, लेकिन लोगों ने इसकी ठीक से व्याख्या नहीं की। अब बाबा ने की, काम को भी जीतो और कामनाओं को भी जीतो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे। तो हम सभी ध्यान देंगे, कुछ भी संसार में पाने की इच्छा न हो। क्या क्या होती है कन्याओं को, बहुत कन्याएं बैठी हैं, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे हम, पढ़ लिख कर नौकरी करें, क्यों करें, अरे बोलो खुल के बोलो, डरो नहीं, आप चेहरा थोड़ा ढीला कर लिया हैं, अपने पैरों पे खड़े हो, अब तक दूसरों के पे खड़े अपने पैरों से, ठीक है, मतलब पैसा हाथ में रहे, किसी के आगे हाथ क्यों फैलाएं, सेंटर में क्यों रहे, बंधन हो जाएगा। ठीक है, ज्ञान योग तो है, करते रहेंगे ना, वहीं थोड़ा समाज में भी मान श्यान मिलेगा, जब हमें अच्छी सैलरी मिलेगी, हमारा नाम होगा, परिवार का नाम होगा, पैसा भी होगा, सब अच्छा हो जाएगा। ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि भाई हैं, आजादी से रहेंगे, घूम फिर सकेंगे कहीं भी, बिल्कुल बात प्रैक्टिकल लगती है। दुनिया वाले सुने तो कहेंगे बिल्कुल ठीक बात है ना, लेकिन नुकसान क्या होगा, ईश्वरीय सुखों से, ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित, दूर। बाहर जब ऑफिस में कोई बहन काम करती है, क्या लोगों की दूषित वृत्तियों का उन्हें सामना नहीं करना पड़ता, बहुत गंदे लोगों से मिलन होता है, अपने को सेफ रखना बहुत कठिन हो जाता है। मेरे पास आती हैं बहनें, माताएं भी आती हैं, कई तो ऐसे दुष्ट होते हैं, तंग कर डालते हैं, कोई नहीं सुनता उनकी। मैं कहता हूं अपने डायरेक्टर को बताओ, वो नहीं सुनता, वो उनकी तरफ है। ऐसा हाल है दुनिया का, कलयुग के अंत में क्रिमिनलिटी अपनी चरम सीमा पर है। इसलिए और इच्छाएं जो होती हैं संसार में, धन बहुत कमाएं, नाम हो जाए हमारा, बाबा की सेवा में भी लगाएंगे, नाम होगा समाज में, बच्चों को अच्छा रख सकेंगे, पढ़ा सकेंगे, बड़े घरों में उनकी शादियां होंगी, ये इच्छाएं भी मनुष्य को ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित करती है। लेकिन इसमें ध्यान देना है, एक व्यक्ति है जो अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा रहा है, अपने कारोबार को नहीं बढ़ा रहा है, उसके पास दुकान है, उसको सिंपली चला रहा है, अपने परिवार की पालना कर रहा है, वो चाहता तो करोड़पति बन जाता, लेकिन उसने ये नहीं चाहा, लेकिन गड़बड़ कहां रह गई, उसने योग का सुख भी नहीं लिया। तो उत्तर दो भाई लोग, उत्तर दो, त्याग कर दिया दुनिया का, बहुत लोग भी बोलने लगे, देखो तुम्हारा बड़ा भाई करोड़पति बन गया, तुम क्या ओम शांति में जाके वैसे के वैसे ही रह गए हो, लोग भी बोले, वो भी सुन लिया। लेकिन अगर योग का सुख नहीं लिया तो कहीं ना कहीं जीवन में उदासी आएगी, निराशा आएगी, बच्चे भी कहेंगे पापा तुमने क्या कर दिया, हमारा तो ध्यान रखते। लेकिन अगर ईश्वरीय सुख बहुत लिया होगा, जीवन खुशियों से भर गया होगा, तो परिवारों में बहुत संतुष्टि होगी और वही उनके लिए सबसे बड़ा खजाना होगा। उन्हें दिखाई देगा जो करोड़पति हैं उनको रात को नींद नहीं आती और ये बाबा की गोद में सोते हैं, वो सवेरे देर से उठते, उठते टेंशन होती है और ये उठते ही भगवान से मिलते हैं, बहुत संतुष्टि होगी। इसलिए त्याग करके अगर भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनाया जाता तो त्याग जीवन में सूखापन ले आता है, इसका ध्यान देंगे सभी लोग। तो हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है और स्वयं को सर्व खजानों से भरपूर करना है, सबको दुखों से मुक्त करने के लिए। कितने दुख आ रहे हैं संसार में, दिख रहा है, माताओं को पता चल रहा है, दुखों के पहाड़ गिर रहे हैं, अभी तो थोड़े हैं। मानसिक रोग संसार को अपनी चपेट में लेते जा रहे हैं। मैं बहुत बार सुना चुका हूं, यहां बार बार उसको नहीं सुनाना चाहता। 2020 से मानसिक रोग तूफानों की तरह बढ़ेंगे इस संसार में। उसका कारण व्हाट्सएप ये तो है ही, लेकिन असली कारण होगा जन्म जन्म के पाप कर्म, जो ब्रेन को इतना इफेक्ट कर देंगे, हाइपर एक्टिव बना देंगे, किसी को नींद नहीं आएगी, किसी का ब्रेन पूरी तरह डल कर देंगे, वो साइको बन जाएंगे। ये दुनिया में अब होने जा रहा है, अब समय दूर नहीं है। हम सबको अपने महान कर्तव्य पूर्ण करने होंगे, मैं बाबा की वो बात भी कभी कभी सुनाता हूँ, मुझे याद आती है और बहुत मेरे अंदर चली गई थी वो बात, तो 30-35 साल पहले की है। जब तक तुमने ब्राह्मण पन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर वापिस नहीं जा सकोगे। अब वो कर्तव्य करने का समय आ रहा है, आ गया है। इसलिए मेडिकल साइंस भी फेल होगी, अब सब हाथ उठा देंगे, कुछ नहीं किया जा सकेगा। मानसिक रोगों की तो वैसे भी दवाई नहीं होती, साथ ही भी साथ नहीं दे पाएंगे। बहुत लोगों की घटना आती है, परिस्थितियां माता आती है, हमारा लड़का 20 साल का है, ऐसा इफेक्ट हो गया है, अपने को कमरे में बंद कर लिया उसने, खाना भी हम खिड़की से डाल देते हैं, खा देता है, न किससे मिलता है, यह हाल हो गया। देखो कैसा लगेगा माताओं को, खिड़की भी तोड़नी पड़ी है जिससे कुछ डाल सके, कहा किसी को आने नहीं देता, मारता है हम सबको। पढ़ रहा था, बहुत अच्छा स्टूडेंट था, मानसिक इफेक्ट हो गया। कितना हो रहा है आजकल ये। अब सभी पूर्वज, कौन कौन पूर्वज बैठे यहाँ, इतने पूर्वज तो मधुबन में ही बैठे, बाकी बाहर भी हैं थोड़े से, इतने तो क्लास में ही हैं। सभी बड़े बनकर अपने इस विशाल परिवार का ध्यान देंगे राजीव, अब ध्यान देना है, क्योंकि जो इस तरह की परिस्थितियों से गुजरेंगे वो भी तो हमारे ही परिवार के होंगे ना, उनके दुखों के वाइब्रेशन इधर भी आ सकते हैं, लेकिन इधर से अगर शांति के वाइब्रेशन जाएंगे तो वो ठीक होने लगेंगे, राहत मिलेगी। माताओं को तो कष्ट अपना नहीं होता, यही होता है बच्चों का, इन्हें कुछ कर दिया, इन्हें कुछ कर दिया है, तो सर्व खजानों से स्वयं को भरना है। आज मैं दो ही खजानों पे ध्यान दिला रहा हूं आपका, मास्टर्स शांति के सूर्य, शांति का खजाना और सुखों का खजाना, इन दोनों से अपने को भरना है। ये भी ध्यान देना होगा कि जो कुछ इस संसार में होगा उसका इफेक्ट हमारी स्थिति को बिगाड़े नहीं, हमारी खुशी को छीन न ले जाए हमसे, हमारी उमंगों पर पानी न फेर दे, हमें भुला न दे तुम्हारा कर्तव्य क्या है। बाबा बहुत याद दिला रहे, अपना कर्तव्य याद रखना है, ये शब्द है बाबा की मुरली में, तुम शांति के सूर्य हो, अपने कर्तव्य को याद रखो। हमें शांति फैलानी है, शांति के वाइब्रेशंस देने हैं, जैसे फायर ब्रिगेड वाले कहीं आग लग जाए तो वो अपने कर्तव्य पूर्ण करते हैं ना, आग बुझाना, वो ये नहीं पूछते किसने लगाई, क्यों लगी, कहाँ गफलत हुई, पूछेंगे क्या, वो इंक्वायरी करेंगे, पीछे बुझाएंगे पहले पता कर लें, ये नहीं, उनको अपना कर्तव्य करना होता है। हमें भी अपने महान कर्तव्य करने हैं। ये दुखी क्यों हो रहे हैं, बहुत पाप किए हैं ना। एक जगह में गया अभी, एक व्यक्ति को पैरालाइज हो गया, बेचारे का बड़ा बुरा हाल था, मैंने एक से पूछा भाई क्या हुआ इसको, कहा पाप बहुत किए। मैंने कहा पाप तो किए, अब इसे मदद तो करो बेचारे को। तो हम ये तो नहीं सोच सकते ना, इन्होंने पाप बहुत किए तो भुगतने दो। डॉक्टर के पास पहुंचे, कोई बाइक तेज चला के पैर तोड़ के लड़का थोड़ा ही कहेगा तुम झिकझिक कर रहे थे भुगतो, मैं तो प्लास्टर नहीं लगाऊंगा, कहेगा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, नहीं उसको अपना काम करना है। हम सुखों का खजाना अपने अंदर भरें, कहां से आएगा, किस खान से आएगा ये खजाना, याद से मिलेगा, और याद में भी विशेष मिलेगा सवेरे की याद से, शाम को भी। मधुबन में तो शाम का वातावरण कितना पावरफुल होता है, देखा ना सभी ने, अति आनंदकारी, आकर्षक, इससे खींच भयंकर भक्त लोग यहाँ भागे आएंगे थोड़े दिनों में, ये खींचेगा सबको। अब दूसरा मुरली का सुख, ज्ञान चिंतन का सुख, मुरली के समय आत्मा सुखी होकर वापिस आए। ये नहीं थोड़ी नींद कर ली, थोड़ा मन इधर उधर भटका, जितना एकाग्रता होगी मुरली में, मुरली का रस ले रहे होंगे, जो जो बाबा कह रहा है उसका साथ साथ अनुभव, ये सुख का भंडार भरता जाएगा। और बहुत सुख उन्हें मिलता है जो दूसरों को सुख देते हैं, सेवाओं से सुख मिल रहा है भाई बहनों को, मिल रहा है, सेवाओं का भी तो सुख है। याद से सबसे ज्यादा, चिंतन से, ईश्वरीय नशे में रहने से। सुख का अर्थ है मन शांत होकर सुखों के संकल्पों में आ जाए। मान लो हमें ये संकल्प है, कौन मिला है मुरली के समय, ये संकल्प है। बाबा बहुत सुनाते थे, किसके सामने बैठे हो ये याद आ जाए। इस जीवन में तुमने क्या क्या देखा, बहुत अच्छा सब चिंतन किया करें। सतयुग के आदि में हम उतरे थे नीचे, जैसे यात्रा देखें अपनी, दिन बीतते गए, दिन बीते, युग बीते, वर्ष बीते, कहाँ पहुंचे, और जब यहां पहुंचे तो क्या देखा, कौन मिला, किसकी पालना मिली। बहुत मजा आएगा। भगवान ने अपना दिव्य कार्य किया, हमने इन आंखों से देखा, उसने नई सृष्टि कैसे रची ये आंखों से देखा, और एक बड़ा काम करके वो ऊपर चला गया। अब हमारी जिम्मेदारी है उसके रहे हुए काम को पूर्ण करना। चिंतन बहुत सुख देगा और शांति की शक्ति, ऐसा समय आएगा जिन्होंने लंबा काल शांति में जीवन जिया है, शांत, लड़ाई झगड़े से मुक्त, टकराव से मुक्त, इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त, मनोविकारों से मुक्त, शांत किया है लंबा समय, वो जिसको दृष्टि देंगे उसका चित्त भी शांत हो जाएगा। क्योंकि ऐसा समय आएगा, आप कल्पना करो, जिनके सब मर गए, वो एक बची है, डल हो जाएगा, पत्थर हो जाएगी बुद्धि भी, जिसको हिंदी में कहते हैं सदमा लग गया, भारी सदमा। ऐसे में दृष्टि देकर उन्हें उससे बाहर निकालना होगा, अपने वाइब्रेशंस देकर दूसरों को बाहर निकालना होगा। ऐसे में अगर उनका शरीर छूटेगा तो क्या गति होगी। तो हमें सबको मुक्ति का वरदान भी देना होगा, इसके लिए अपने अंदर शक्तियों का खजाना भी भरेंगे, ज्ञान का खजाना भी भरेंगे। ज्ञान का खजाना क्यों जरूरी होगा, देने के लिए तो होता ही है, ताकि हम स्मृति स्वरूप रह सकें कि जो कुछ हो रहा है यही होना है, नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, अब ये दुनिया समाप्त होगी, अब देव युग आएगा, हम सब देवता बनकर वहां चलेंगे, स्मृति रहे क्यों हो रहा है, हाय अब क्या होगा, ये नहीं। और बाबा के साथ का अनुभव बहुत सुंदर, उसका अनुभव रहे तो हम अपने कर्तव्य भी कर सकेंगे। अब सभी इस देव देवियां विजन बनाएंगे, भक्त हमारे सामने आ गए, मुख से बोल रहे हैं मैं बहुत दुखी हूं, मेरे दुख मिटाओ। क्या करेंगे हम, किस स्मृति से दृष्टि देंगे, क्या बोल बोलेंगे उनको, और कैसे वाइब्रेशंस देंगे, ताकि कुछ समय के लिए सही उनके दुख हल्के हो जाएं, रोशनी आ जाए उनके जीवन में। ये सभी विजन बनाएंगे, चित्र बनाएंगे अपनी बुद्धि में। भक्त हमारे सामने आ गए, 1000 आ गए, हमें उनकी कामनाएं पूर्ण करनी है। क्या क्या होना चाहिए मेरे पास, ये बड़े कार्य हमारा इंतजार कर रहे हैं। इसको ही बाबा कहते थे, समय तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बहुत अच्छा एक टाइटल बाबा ने दिया है, जो मैं आपको कुछ चीजें याद दिला रहा था अपने कर्तव्यों की। तुम युग परिवर्तक हो, नए दिन सुनहरे दिन लाने वाले हो। अपने कर्तव्य को याद करो, जग के अंधकार मिटाने वाले हो। कहीं जग के अंधकार मिटाने वाले खुद अंधकार में तो नहीं आ जाते। अपने महान कार्यों को याद करें, संपूर्ण सत्य ज्ञान हमें मिला है तो रोज शाम को विशेष रूप से, सवेरे भी याद आ जाए तो तब भी करना, संसार को अच्छे वाइब्रेशंस देने की प्रैक्टिस और अनुभव, साक्षी भाव बढ़ाने के अनुभव बहुत जरूरी है। और जो मुरलियों में बहुत आ गया है, आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। तो सभी ये महान कार्य करने के लिए अपने को तैयार करेंगे, 3 मिनट के योग में संसार को शांति का दान देंगे।
प्रभु का ध्यान।